Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड्स पॉडकास्ट का ये 13वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि क्रूसेडर्स और खास तौर पर पोप पांचवें धर्म युद्ध में क्रूसेडर्स की हार का मुख्य कारण जर्मन सम्राट फ्रेडरिक द्वारा क्रूसेडर्स की मदद नहीं करना मानते थे। इस आरोप ने जर्मन सम्राट फ्रेडरिक को छठा क्रूसेड शुरू करने के लिए उकसाया। दूसरी तरफ पोप द्वारा बायकॉट किए जाने और काफिर करार दिए जाने से आहत फ्रेडरिक ने यरूशलम पर कब्जा करने का इरादा किया ताकि लोगों के बीच फिर से अपनी लोकप्रियता हासिल कर सके। जर्मन सम्राट फ्रेडरिक ने 7 सितंबर 1228 को एक छोटी सेना के साथ अका में प्रवेश किया। वो मुख्य रूप से मिस्र और फिलिस्तीन के शासक अल कामिल से यरूशलम को मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से छीनना चाहते थे। अपने भाई अल मुआज़्ज़म से गंभीर दुश्मनी के बाद अल कामिल ने फ्रेडरिक को खुश करने और अपने भाई के खिलाफ क्रूसेडर सेना का उपयोग करने के लिए उसके साथ एक समझौता कर लिया। इस समझौते का मतलब था कि अगर वो अल मुआज़्ज़म के खिलाफ अल कामिल की मदद करता है तो वो यरूशलम को फ्रेडरिक को सौंप देगा। लेकिन फ्रेडरिक के एशिया पहुंचने से पहले अल मुआज़्ज़म की मौत हो गई और उनके कम उम्र बेटे को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसे कभी भी अल कामिल के लिए खतरा नहीं माना गया। इस प्रकार अल कामिल ने महसूस किया कि उन्हें बिना किसी कारण फ्रेडरिक को यरूशलम नहीं सौंपना चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक आगे बढ़ चुके थे। अब अल कामिल को या तो उनसे लड़ना होगा या अपना वादा निभाना होगा। अगर उन्होंने लड़ने का फैसला किया तो इस स्थिति में अल कामिल के लिए खतरा गंभीर हो जाएगा, और अगर वो फ्रेडरिक की इच्छा के अनुसार उसे पूरा फिलिस्तीन दे देते हैं तो भी उन्हें मुसलमानों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने फ्रेडरिक के पास एक दूत भेजने और शांति की शर्तें प्रस्तावित करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने दूत फखरुद्दीन को, जो पहले अल कामिल की ओर से यूरोप जा चुके थे, फ्रेडरिक के पास भेजा और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार बैतलहम और यरूशलम के दो शहर और नाज़रेथ के शहर, साथ ही सीडोन के आसपास का बाकी मुस्लिम इलाका क्रूसेडर राज्य के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। यरूशलम शहर के अंदर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद के दो पवित्र स्थल मुसलमानों के नियंत्रण में रहेंगे और दोनों पक्षों के सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये भी तय किया गया कि शांति संधि का 10 साल तक सम्मान किया जाएगा। अल कामिल के इस फैसले के साथ सलाहुद्दीन के सभी प्रयास और इस्लामी इकाई की रक्षा के लिए संघर्ष रातों रात बर्बाद हो गया। इसलिए मुसलमान इस संधि से संतुष्ट नहीं थे। इस संधि के साथ अल कामिल ने खुद को दोस्तों और दुश्मनों के सामने छोटा कर लिया। उपदेशकों, वक्ताओं और मौलवियों ने अयूबी शासक के इस कदम को मुसलमानों का अपमान करार दिया। उनके दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों ने भी नाखुशी जाहिर की। अल मुआज़्ज़म के बेटे अल नासिर ने दमिश्क में 3 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की, और अन्य प्रतिद्वंदियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर लोगों को अल कामिल के खिलाफ भड़काया। अगर अल कामिल भारी प्रतिरोध के बाद पराजित हो जाते या मारे भी जाते और यरूशलम पर क्रूसेडरों का कब्जा हो जाता, तो मुसलमानों, सेनापतियों और यहाँ तक के यूरोपियों की नज़र में उनका सम्मान रह जाता। लेकिन ऐसा करके उन्होंने खुद को अपमानित किया। इससे ईसाइयों में ये संदेह भी पैदा हुआ कि मुस्लिम शासकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामी मूल्यों में ज़रा भी विश्वास नहीं रखते और अपनी सत्ता को बचाने के लिए मुसलमानों के सभी धार्मिक और सांसारिक मूल्यों को दुश्मन के हवाले करने को तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ्रेडरिक इस स्थिति का पूरा फायदा नहीं उठा सके। पोप द्वारा बायकॉट किए जाने और लोगों की नज़र में पांचवें धर्म युद्ध में क्रूसेडरों की हार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले सम्राट इस समझौते से हालात अपने पक्ष में मोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इस समझौते से पोप और यूरोप के ईसाई उनसे खुश हो जाएंगे और पोप उनके बहिष्कार का अपना फैसला वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्च उनके इस कदम से नाखुश था और यहाँ तक के पादरी और बिशप उन्हें देखकर छिप जाते थे। क्रूसेडर्स और चर्च का फ्रेडरिक से असंतोष का कारण ये था कि धर्म युद्धों में चर्च की हमेशा से प्रमुख भूमिका रही थी, जबकि इस स्तर पर उसकी कोई भागीदारी या प्रभाव नहीं था। एक और क्रूसेडर सैन्य बल द्वारा फिलिस्तीन के सभी क्षेत्रों को मुसलमानों से छीनने में रुचि रखते थे, जबकि फ्रेडरिक ने यरूशलम और फिलिस्तीन के अन्य क्षेत्रों को युद्ध रहित शांति संधि के माध्यम से प्राप्त किया था। दूसरी ओर यरूशलम के पवित्र स्थान मुसलमानों के नियंत्रण में थे और क्रूसेडर सिर्फ मुसलमानों की अनुमति से ही उनमें प्रवेश कर सकते थे, अर्थात ये पवित्र शहर पूरी तरह से ईसाइयों के नियंत्रण में नहीं था। फ्रेडरिक के प्रति पहले से मौजूद असंतोष और इन कारणों ने उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक दिया। इसके अलावा फ्रेडरिक के प्रति फ्रांसीसी असंतोष ने भी उनके प्रति अविश्वास और बदनामी को बढ़ावा दिया। फ्रांसीसियों के प्रति लंबे समय से चली आ रही नाराजगी के कारण फ्रेडरिक को फिलिस्तीनी शहरों पर फ्रांसीसी प्रभुत्व को जारी रखने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों के स्थान पर उन गैर फ्रांसीसी तत्वों को स्थापित करने का प्रयास किया जिन पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने काउंट ऑफ ब्रियन को यरूशलम की सरकार से वंचित कर दिया और साइप्रस के शासक को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, छठा धर्मयुद्ध किसी युद्ध जैसा नहीं था। सम्राट फ्रेडरिक ने जो किया वो धर्मयुद्ध की तलवार दशकों तक नहीं कर सकती थी। हालांकि इस संधि की पोप और आर्क बिशप ने निंदा की थी। पोप ने फ्रेडरिक को यरूशलम में प्रवेश करने से भी मना किया था, लेकिन फ्रेडरिक ने पोप के आदेश की अवहेलना करते हुए यरूशलम में प्रवेश किया, पवित्र समाधि के गिरजाघर में यूचरिस्ट का अनुष्ठान किया और राज्याभिषेक किया। अपने राज्याभिषेक के दिन जारी एक घोषणा पत्र में उन्होंने स्वयं को सांसारिक अधिकार से भी ऊंचा स्थान दिया और स्वयं को दाऊदी व्याख्यान के संदर्भ में रखा। मध्ययुगीन विचारधारा में दाऊद किंग और पैगंबर दोनों थे। फ्रेडरिक ने लिखा था, जो लोग सच्चा विश्वास रखते हैं उन्हें यह जानना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि जिस पर सदा कृपा रही है वो हमारे पास आया है और उसने अपने लोगों को मुक्ति दिलाई है और खुद दाऊद के परिवार में हमारे सम्मान के लिए आज़ादी का जाम उठाया है। ये स्पष्ट है कि इसका मतलब पोप के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। इस तरह से पोप द्वारा बहिष्कृत जर्मन सम्राट ने खुद को पोप के स्थान पर रख दिया और स्वयं को पोप से अधिक उपयोगी और प्रभावी करार दिया। कहा जा सकता है कि फ्रेडरिक के इस कदम ने पश्चिमी इतिहास और संस्कृति में रिनेसेंस के रूप में जाने जाने वाले आंदोलन को जन्म दिया। इसी के बाद यूरोपीय शासकों ने पोप को बदनाम करके उन पर अपनी निर्भरता और जनता के बीच उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। यह बात अहम है कि उस काल में एशिया और इस्लामी देशों में यूरोपीय कूटनीति का प्रभाव स्थापित हुआ। उस समय तक यूरोपीय राष्ट्रों का मुस्लिम राष्ट्रों के साथ टकराव ज्यादातर लड़ाइयों और संघर्षों में ही उजागर होता था, जिनमें मुसलमानों की जीत भी होती थी। तब से इस्लामी देशों में यूरोपीय लोगों द्वारा एक सुनियोजित कूटनीति अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गए। उन्होंने पर्दे के पीछे से लागू की गई जटिल नीतियों से मुसलमानों के भाग्य पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। संधि संपन्न होने और यरूशलम में राज्याभिषेक के फौरन बाद फ्रेडरिक यूरोप लौट गए, क्योंकि दक्षिणी इटली में अव्यवस्था फैली हुई थी। काउंट ब्रियन, जिसे फ्रेडरिक ने यरूशलम की गद्दी से हटा दिया था, पोप की सेना के नेतृत्व में सिसिली पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। चूंकि पोप सिसिली पर फ्रेडरिक के नियंत्रण से खुश नहीं थे और वहां की सरकार अपने लिए चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कदम का स्वागत किया। जब फ्रेडरिक इटली पहुंचे तो उन्होंने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया और अंततः पोप के साथ समझौता कर लिया। सेंट जर्मेन की संधि के तहत फ्रेडरिक ने उनके साथ समझौता कर लिया और पोप ने उनका बहिष्कार समाप्त कर दिया। इस तरह फ्रेडरिक एक राष्ट्रीय नायक बनकर उभरे। लेकिन इस्लामी सरजमीन पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। फ्रेडरिक और अलकामिल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर के बाद से एशिया में कई बदलाव हुए। मंगोलों ने अपनी प्रगति जारी रखी और सीरिया और एशिया माइनर की सीमाओं तक पहुंच गए। अय्यूबी बंधु और फिर उनके बेटे और वंशज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन खारिज्म शाह ने, कि जो मंगोलों से पराजित होकर भाग गया था, अय्यूबियों और सेल्जुकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। दूसरी ओर अय्यूबियों की कमजोरी के कारण एशिया माइनर के सेल्जुक भी उनकी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के दोनों ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेवेंट और एशिया माइनर में बेलगाम और बिखरे हुए ख्वारिज्मियों की कार्रवाइयों ने असुरक्षा और अशांति को और भड़का दिया था। इस्लामी दुनिया में क्रूसेडर खतरे को रोकने के लिए कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था। इस कारण ये स्थिति क्रूसेडर अवसरवादियों के लिए आकर्षक थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये अशांति और अलकामिल और फ्रेडरिक के बीच शांति संधि की समाप्ति के साथ मेल खाती थी। कुछ समय बाद फिलिस्तीन के शहरों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। कुछ छोटी मोटी जीत के अलावा क्रूसेडरों को दो मुख्य लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। गजा के पास हुए एक युद्ध में 1000 से ज्यादा ईसाई क्रूसेडर्स मारे गए और 600 बंदी बना लिए गए। इस जीत के बाद मिस्र के शासक ने एक विशाल सेना के साथ यरूशलम पर हमला कर दिया और उसे आसानी से जीत लिया। उसके बाद से धर्म योद्धा यरूशलम को मुसलमानों से कभी नहीं छीन पाए और कई महत्वपूर्ण किले मुसलमानों के हाथों में चले गए। पोप तक पहुंची इस खबर ने उन्हें 7वां धर्मयुद्ध शुरू करने के लिए प्रेरित किया होगा।